18 अक्टूबर बृहस्पतिवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। सबरीमला मंदिर के प्रवेश के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का निधन।
फिर अंदर चले गए अपने कमरे के टॉयलेट की तरफ, उधर कहीं जगह जहां भी मिली किसी को मना नहीं कर पाते थे, बड़े पोलाइट थे।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए।
उनका मंदिर जिस किसी मार्ग से बनता है बनना चाहिए, सरकार ने उसका कानून लाना चाहिए।
पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के मानहानि मामले पर 31 अक्टूबर को होगी सुनवाई। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में हिंदू कट्टरपंथियों का प्रदर्शन जारी है। आज इस हिंसक विरोध के दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। उन्होंने बसों और कारों पर पथराव भी किया। ईरान से आई रिपोर्टों के मुताबिक दो अखबारों के प्रबंध निदेशकों पर विभाजनकारी खबर छापने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कदम मशहद शहर में सेक्स टूरिज्म की पड़ताल करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित करने पर उठाया गया है। एक अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ISNS ने कहा कि शर्क नाम के अखबार और सरकार द्वारा चलाए जा रहे शहरबंद के निदेशकों पर ईरान और इराक के लोगों के बीच दरार पैदा करने के इरादे से खबर छापने का आरोप है। अगस्त में ईरान के मीडिया ने मशहद में आने वाले पुरुष तीर्थयात्रियों के लिए हो रहे सेक्स के कारोबार को लेकर रिपोर्ट छापी थी। क्रीमिया के रूस अधिकृत क्षेत्र में हुए बंदूक और बम हमले के बाद 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है। केर्च शहर में एक कॉलेज में यह हमला हुआ था। एक घायल लड़की की मौत होने से अब तक इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इस हमले को कॉलेज के ही एक छात्र ने अंजाम दिया था, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। 40 से ज्यादा लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले वाली जगह पर आई एक महिला ने इस तरह से नाराजगी जताई। सिक्योरिटी कहाँ थी? सुरक्षा कर्मी उस समय कहाँ पर थे? बच्चों को बेहद करीब से गोली मारी गई है, ऐसा कैसे हो गया? ये थे केर्च में हमले वाली जगह पर आई एक महिला के शब्द। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य ने गर्भपात के अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। नए कानून के तहत अब गर्भधारण के 22 हफ्तों के अंदर गर्भपात करवाया जा सकेगा। इसके बाद गर्भपात के लिए 2 डॉक्टरों से अनुमति लेनी जरूरी होगी। न्यू साउथ वेल्स ही अब ऐसा ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र राज्य बचा है जहाँ पर गर्भपात एक अपराध है। क्वींसलैंड में जनप्रतिनिधियों ने गर्भपात को अपराध के दायरे से हटाने के लिए वोट करने के बाद खुशी जाहिर की। क्वींसलैंड की प्रीमियर एनास्तासिया पलासुजोक ने कहा कि अब महिलाओं को गर्भपात करवाने के लिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा।
It's historic. It's taken a century to get to this point.
ये ऐतिहासिक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सदी लग गई। जिस तरीके से ये पूरी बहस हुई उससे मुझे गर्व महसूस हो रहा है। सभी खुश हैं कि अब ये अपराध नहीं रहा। मैं सभी से अपील करती हूँ कि कानून में इस बदलाव का सम्मान करें। ये थे क्वींसलैंड की प्रीमियर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। तुर्की में सरकार समर्थक अखबार यानी सफाक ने प्रकाशित किया है कि तुर्की की सरकार फिलहाल उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को अमेरिका को नहीं देगी जिसे कथित तौर पर खाशोज्जी के इस्तानबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर हत्या का सबूत बताया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी एक कॉपी मांगी थी और कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि इस तरह का कोई सबूत है भी। इस कथित रिकॉर्डिंग के हवाले से तुर्की के मीडिया में खाशोज्जी की कथित हत्या की विभत्स जानकारी सामने आई थी। सऊदी नेता अपने देश के ऊपर लग रहे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। इस बीच 3 यूरोपीय सरकारों के मंत्रियों ने सऊदी अरब में होने जा रही निवेशकों की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। पहले ही बहुत सारी हस्तियों और संगठनों ने इससे नाम वापस ले लिया था। ये कदम पत्रकार जमाल खाशोज्जी की संदिग्ध हत्या के कारण उठाए जा रहे हैं। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी, संदीप सोनी के साथ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए केरल के सबरीमला मंदिर में आज लगातार दूसरे दिन 10 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की किसी भी महिला को मंदिर में जाने नहीं दिया गया। 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को मंदिर में जाने से रोकने के लिए BJP और विश्व हिंदू परिषद ने राज्यव्यापी बंद बुलाया था, जो मोटे तौर पर सफल रहा। सबरीमला से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ये आवाजें जो आप सुन रहे हैं सबरीमला से आ रही हैं। ये जापा हर मलयालम महीने की पहली तारीख को निर्मलायम पूजा के समय होता है। ये पूजा करीब 3 घंटों तक चलती है और उसकी थोड़ी देर बाद खबर मिली कि एक युवा महिला सबरीमला मंदिर की कड़ी सीढ़ियां चढ़कर आ रही हैं। थोड़ी देर बाद ये पता चला कि महिला को पुलिस सुरक्षा के साथ वापस जाना पड़ा। महिला ने नीचे पहुंचकर बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन एक स्पष्ट सवाल का जवाब दिया। महिला का नाम है सुहासिनी राज, जो न्यूयॉर्क के एक अखबार में काम करती हैं। उन्होंने कहा,
पुट स्टोन्स ऑन योर
हाँ, हम पर पत्थर फेंका। ये थे सुहासिनी राज के शब्द। सुहासिनी किसी वजह से BBC से बात तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने हमारे सवाल का जवाब SMS के जरिए पहुंचाया। हमने पूछा था कि क्या आप स्वामी अय्यप्पा के भक्त के तौर मंदिर आई थी या एक रिपोर्टर के तौर पर। उनका जवाब था, हम वहां रिपोर्टर के तहत गए थे। हम इस खबर की तलाश में थे कि क्या कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ महिला भक्त जा पा रही है या नहीं। हमने मंदिर के PRO को कल ही बता दिया था कि हम वहां रिपोर्ट करने के लिए आ रही हैं। हमने पुलिस को भी बताया था, हम वहां काम की वजह से गए थे। ये थे सुहासिनी राज के शब्द। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ट्वीट के जरिए कहा कि सबरीमला का मंदिरों में एक अनोखा स्थान है, उसके भक्त हर कौम के लोग हैं और BJP RSS इसको कभी कबूल नहीं करते हैं। बहरहाल आज BJP और प्रवीण तुगाड़िया की अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का बुलाया राज्य बंद ज्यादातर सफल रहा। इमरान कुरैशी, BBC, सबरीमला मंदिर, पत्तनमतिट्टा, केरला।
BBC इंडिया बोल।
सुप्रीम कोर्ट ने हर उम्र की महिलाओं के लिए सबरीमला मंदिर के द्वार खोले, लेकिन पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कर रही हैं इसका विरोध। क्या ऐसा करके महिलाएं स्वयं अपना अहित नहीं कर रही हैं? यही है इस बार BBC इंडिया बोल का विषय। इस शनिवार 20 अक्टूबर को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पूर्व विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर के आपराधिक मानहानि के मुकदमे को सुनने के लिए सहमति व्यक्त की है। जज ने MJ अकबर को 31 अक्टूबर को अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में तलब किया है। MJ अकबर और प्रिया रमानी दोनों में से कोई भी आज अदालत में मौजूद नहीं था। BBC संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
आज आपराधिक मानहानि मुकदमे का पहला दिन था। पटियाला हाउस कोर्ट में वकील, पुलिस और पत्रकारों की एक भीड़ सुबह से ही जमा हो गई थी, लेकिन कार्रवाई 4 घंटे की देरी से शुरू हुई। MJ अकबर की तरफ से वकालत करने आई थीं वरिष्ठ वकील गीता लुथरा, जिन्होंने अदालत से कहा कि प्रिया रमानी के लेख और ट्वीट्स ने 40 साल से अधिक की उनकी प्रतिष्ठा और साख खराब कर दी है। उन्होंने कहा कि इसी कारण उनके मुवक्किल ने कल विदेश मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। MJ अकबर के वकील ने कहा कि 1200 लाइक्स और 200 रीट्वीट्स दिखाते हैं कि लेख कितना व्यापक रूप से पढ़ा गया था। वकील लुथरा ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट समर विशाल से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा उनके ट्वीट्स को उठाया गया, जिसके कारण उनके मुवक्किल की छवि खराब हुई। अदालत के कमरे के बाहर वकीलों की एक बड़ी भीड़ जमा थी। एक युवा वकील अंकिता सिंह से जब मैंने पूछा कि क्या अदालत में सालों पहले का मामला कानूनी रूप से मजबूत होगा, तो उन्होंने कहा,
सब चीज़ को सॉल्व करना एक
लॉयर्स के लिए, एक जज के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है।
हाँ, ये मैं पूछने वाला था कि अदालत में तो सबूत माना जाता है, तो क्या
वो चीज़ इतनी डेप्थ में जा नहीं पाई जितनी डेप्थ में तब जा सकती थी, जितनी नज़दीकी से तब देखा जा सकता था अब नहीं देखा जा पाया।
कानूनी एतबार से ये केसेस कमज़ोर हैं आपके हिसाब से?
कमज़ोर नहीं है, अगर आपके पास अभी भी एविडेंसेस हैं आप अभी भी प्रूफ कर सकते हो।
ये मामला 20 साल से भी पहले का है जब एमजे अकबर एशियन एज अखबार के संपादक थे। इस अखबार की कई और महिलाओं ने एमजे अकबर के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। अखबार की 19 महिला पत्रकारों ने प्रिया रमानी के लिए समर्थन व्यक्त किया है। कल एमजे अकबर के इस्तीफे के बाद प्रिया रमानी ने इसका स्वागत करते हुए कहा था कि अदालत में उन्हें इंसाफ मिलेगा। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में आज अपना स्थापना दिवस हर साल की तरह विजयादशमी के उत्सव के रूप में मनाया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सरकार को कानून बनाकर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करना चाहिए। नागपुर से संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट।
उनका मंदिर जिस किसी मार्ग से बनता है बनना चाहिए, सरकार ने उसका कानून लाना चाहिए, अपने संविधान में भी जो मूल प्रति है उसमें जो चित्र दिखाए गए, चित्रों की मालिका है हमारे जीवन का निर्देश करने वाली, उसमें सब बातें, उसमें भगवान राम का चित्र है। ये भी लोग कहते हैं कि इनकी तो सत्ता है अभी तक क्यों नहीं बना, तो सत्ता बदलने से मांगे पूरी होती है ऐसा एक भ्रम है लेकिन चल रहा है। और प्रजातंत्र में ये भी है कि चुनाव होते हैं, हम सब मतदाता है, एक दिन मतदान करो और उसको 5 साल भुगतो कम से कम।
राम जन्मभूमि मंदिर मुद्दे पर केंद्र सरकार पर अपरोक्ष रूप से गुरुवार को ताना कसते ये हैं संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। उन्होंने कुछ इसी अंदाज में नागपुर में संघ स्वयंसेवकों को संबोधित किया और अपने बयान में तीखापन रखते हुए उन्होंने यह भी कह दिया कि संघ कभी किसी राजनीतिक दल के पीछे न था न रहेगा।
किसी राजनीतिक दल के पीछे हम कभी खड़ा नहीं रहे न रहेंगे। हमारा तो एक है कि अपना देश ठीक चलना चाहिए, ठीक चलाने वाले लोग अगर ये काम हमको मतदाता के नाते करना है तो हम करेंगे।
आने वाले कुछ महीनों तक चुनावी माहौल रहेगा, इसी के मद्देनजर अपने अंदाज में तमाम राजनीतिक दलों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने यह भी कह डाला कि कोई भी दल 100% अच्छा नहीं है। उन्होंने मतदान के लिए भाजपा का नाम नहीं लिया, बस मतदाताओं से राष्ट्रहित का विचार करने वाले को मतदान करने की अपील की।
मेरी जाति का है, मुझे कुछ लाभ पहुंचाएगा, स्वार्थ का विचार, भेद का विचार नहीं होना चाहिए, सकल राष्ट्रीय हित का विचार करो। आप भारत के लिए क्या उत्तम, छोड़ दो भाषा, छोड़ दो प्रांत, छोड़ दो पंथ संप्रदाय धर्म, छोड़ दो आप जात पात, विचार करो भारत किससे बढ़ेगा।
शहरी नक्सलियों के मुद्दे पर उन्होंने संघ और सरकार की भूमिका का समर्थन किया। वहीं सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अदालत द्वारा अनुमति दिए जाने से भड़के विवाद पर उन्होंने परंपरा का पक्ष लिया।
ये जो पंथ संप्रदाय है वो अपना अपना होता है, उसके कर्ता धर्ता किसी को माना जाता है। जैसे अमुक गोष्ठ न्याय, अमुक बात न्याय सम्मत है कि नहीं है ये तय करने का अधिकार केवल न्यायालय को है और किसी का नहीं। वैसे अमुक बात धर्म सम्मत है कि नहीं ये उस धर्म में जो धर्माचार्य वो तय करते उनसे बात होनी चाहिए।
उधर बच्चों के हकों के लिए कार्य करने वाले श्री कैलाश सत्यार्थी ने विदेशी पूंजी निवेश और खुदरा व्यापार आदि जैसे मुद्दों पर इस अवसर पर जो बात रखी उसका संघ समर्थित स्वदेशी जागरण मंच ने समर्थन किया है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो नागपुर से ही हैं हर वर्ष की तरह स्वयंसेवक के गणवेश में उपस्थित नजर आए। नागपुर से संजय रमाकांत तिवारी, बीबीसी।
संसद के रास्ते राम मंदिर बनाने के भागवत के बयान का मतलब क्या है, मायने क्या है, आइए bbchindi.com पर जहां डिजिटल एडिटर बीबीसी न्यूज हिंदी के डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी का ब्लॉग इसी बारे में लिखा गया है, आइए विस्तार से पढ़िए। और अब चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जहां प्रशासन द्वारा 2 कश्मीरी छात्रों के निलंबन को वापस लिए जाने के बाद अब कश्मीरी छात्रों ने वापस लौटने का इरादा फिलहाल छोड़ दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कहा है कि निलंबित किए गए छात्रों को निर्दोष पाया गया है। हालांकि पुलिस भी मामले की जांच कर रही है क्योंकि 2 छात्रों पर राष्ट्रद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। अलीगढ़ से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट सुनें।
یہ معاملہ تب شروع ہوا جب پورو چھاتر منان بشیر وانی کی 11 اکتوبر کو اتری جموں کشمیر کے کپواڑا میں سرکشا بلوں کے ساتھ ہوئی مڈ بھیڑ میں موت ہو گئی تھی۔ وانی وشودیالے میں پی ایچ ڈی کا چھاتر تھا۔ پڑھائی چھوڑ کر وانی نے چرمپنتھی سنگٹھن حزب المجاہدین جوائن کر لیا تھا اور اس کا کمانڈر بن گیا۔ وانی کی موت کے بعد وشودیالے میں کچھ کشمیری چھاتروں پر آروپ لگا کہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ اسی دوران کشمیری اور غیر کشمیری چھاتروں کے بیچ سنگھرش بھی ہوا۔ جنازے کی نماز تو نہیں ہوئی مگر جھڑپ کے بعد وشودیالے نے 2 کشمیری چھاتروں کو نلمبت کر دیا جبکہ 9 انیہ چھاتروں کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا۔ کاروائی کو لے کر کشمیری چھاتروں کو لگا کہ ان کے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے۔ انہی چھاتروں میں سے ایک سجاد راٹھر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
2018 اور 2019 کا اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہے تو لڑکے کچھ وہاں پہ کشمیری بھی جمع تھے، تو جب منان وانی کی انکاؤنٹر کی خبر آئی تو سمپلی دے وے ڈسکسنگ سم کہ کشمیر میں کسی کا سچویشن ہے، ایسے ہی کر کے وہ کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ لیکن جب پروکٹورل ٹیم وہاں پہ آئی اور کچھ لڑکے آئے تو انہوں نے بدتمیزیاں شروع کی کشمیریوں کے ساتھ، کسی نے کچھ گالی گلوچ بھی دی اور پروکٹر نے لڑکوں کو استعمال کر کے ان کو تھوڑا کھدیڑا وہاں سے اور ڈسٹربنس کریٹ کی تھا۔ لیکن جب ہم نے یہ خبر سنی کہ لڑکوں کا سسپینشن ہوا ہے، شو کاز نوٹس، اور سب سے بڑی بات جب سیڈیشس چارج، اور وہ بھی امیجیٹلی وداؤٹ اینی پروب، نہ کوئی کمیٹی بٹھائی نہ کچھ پروب تھا، پینک سچویشن کریٹ ہو گئی۔ یہ ایسے آخر ایسے ہوا کیوں؟ کہ معاملہ کیا ہوا؟ نہ کسی نے نماز پڑھی، نہ نہرے تھی، یہ کیا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ تو پھر ایک ویڈیو بھی چلی، بالکل ڈاکٹرائن تھی، آپ خود بھی اگر دیکھ سکتے، انالیسس کر سکتے، تو کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوا۔
ایک انیہ کشمیری چھاتر محبوب الحق کا کہنا ہے کہ وشودیالے پرشاسن کے اکساوے پر غیر کشمیری چھاتروں نے کشمیری چھاتروں پر حملہ کیا تھا۔
کیا پرابلم تھی اگر ہم جنازہ کر لیں تو اس میں کیا پرابلم تھی؟ اب یونیورسٹی کا ماحول یا باہر کا ماحول ٹھیک نہیں تھا، وی کمپلائڈ ٹو دی آرڈر آف دی پروکٹر، ہم نے پروکٹر سر کا مان لیا تو ہم نے جنازہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ بٹ پھر اس ایشو کو تھوڑا سا مطلب وہ ایک کشمیری ورسز اینڈ کشمیری ورسز نان کشمیری کر دیا، دو جو یہاں کے اسٹوڈنٹس آ گئے انہوں نے تھوڑا سا ہمیں سے بدتمیزی کی، اینڈ دے بیٹ اس، لٹرلی دے بیٹ اس، انہوں نے ہمیں مارا۔ ہمارے استاد مارتے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، تو اگر وہ ہمیں مارتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم نے مارا تو یہ مسئلہ اس ایشو کو انہوں نے سینسٹائز زیادہ کر دیا۔
علی گڑھ مسلم وشودیالے چھاتر سنگھ کے پورو ادھیکش فیض الحسن پر بھی کشمیری چھاتروں نے آروپ لگائے ہیں، مگر فیض الحسن کہتے ہیں کہ جب کشمیری چھاتر بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو دوسرے چھاتر آویش میں آ گئے۔
تھوڑا سا ایک ریٹیلیشن یہ ہوا تھا آپس میں کہ وہاں سب لوگ منع کر رہے تھے، پورا کیمپس یہ منع کر رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ مان جائیے، جب نہیں مان رہے تھے تو پھر میں تو چلا گیا۔ وہاں اتفاق سے پتہ چلا کہ کچھ لڑائی ہونی شروع ہوئی، بحث بازی، مطلب کہتے نہیں کہ آپ جاؤ یہاں سے، دھکا مکی ہونے لگا کہ اب جاؤ یہاں سے، بہت دیر ہو گئی، قریب 3-4 گھنٹے ہو گئے تھے یہ سب ہوتے ہوتے۔ تو وہاں غصہ لوگوں میں بھی بڑھ رہا تھا کہ لوگ مان کیوں نہیں رہے، ہم کسی بھی حالت میں مطلب نہیں ماننے کے لیے تیار تھے۔ تو ایک جو چھوٹا سا ریٹیلیشن تھا وہ شروع ہوا، پھر ہم لوگ بھاگ کر کے پھر سے گئے کہ کسی طرح جو ہے اس چیز کو ختم کروایا جائے، تو خیر اس کے بعد سب سارے لڑکے چلے گئے۔ بس اتنا سارا ہوا تھا، بابے سید ہے، گیٹ ہے، اس کے اندر اگر انٹری کر دیا تو سب الگ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو آئیڈینٹی اس طرح نہیں دیا جائے گا۔ پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں جگہ کے ہیں، بہار کے ہیں، کشمیر کے ہیں، بنگال کے ہیں، پھر ہم نہیں کہتے ہیں یہ ساری چیزیں۔
وشودیالے کے پرشاسن کا کہنا ہے کہ کشمیری چھاتروں کے خلاف جو کارروائی کی گئی وہ انوشاسن کو دیکھتے ہوئے کی گئی تاکہ جانی مانی شیکشنک سنستھا بدنام نہ ہو جائے۔ وشودیالے کے پروکتا شافی قدوائی کہتے ہیں،
یونیورسٹی میں اگر کسی طرح کا آپ کو پروسیشن نکالنا ہے یا کہیں جی بھیڑ اکٹھا ہونی کسی بھی ایشو پہ، تو اس کے لیے آپ کو انٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ۔ تو اس چیز کی سینسٹیوٹی کو ہم نے نظر میں رکھتے ہوئے پرائما فیسی 2 بچوں کو سسپینڈ کر دیا تھا اور باقی لوگوں کے خلاف ہم نے شو کاز نوٹس جاری کر دیے تھے۔ یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے اس کا، اس کو ہم لوگوں نے عمل میں لایا۔ دیکھیے صاحب، ہماری انٹرنل کمیٹی کی رپورٹ نے تو اسے سرے سے خارج کر دیا ہے اور یہ چیز آگے بھی کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے۔
2 کشمیری چھاتروں کا نلمبن رد کر دیا گیا ہے، مگر چھاتروں میں روش ہے کہ ان چھاتروں کے خلاف دیش دروہ کا معاملہ تو چل ہی رہا ہے۔ حالانکہ اب وشودیالے پرشاسن کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جانچ کمیٹی کی رپورٹ پولیس ادھیکاریوں کو بھیجے گی۔ وشودیالے نے امید جتائی ہے کہ راشٹر دروہ کا معاملہ بھی جلد ہی واپس لے لیا جائے گا۔ سلمان راوی، بی بی سی، علی گڑھ۔
پہلے اتر پردیش اور پھر اتراکھنڈ کے مکھیہ منتری رہے ورشٹھ راج نیتا این ڈی تیواری کا لمبی بیماری کے بعد 93 ورش کی آیو میں ندھن ہو گیا ہے۔ اسے سنیوگ ہی کہا جائے گا کہ 18 اکتوبر 1925 کو جنمے این ڈی تیواری کا دیہانت بھی ان کے جنم دن پر ہوا۔ این ڈی تیواری کی شخصیت پر نظر دوڑا رہے ہیں ریحان فضل۔
میں فریڈم فائٹر کے بطور تو کانگریس میں ہی تھا۔ آزادی پراپت ہونے کے بعد ایک سماجوادی وچار ہونے کے ناطے جب کانگریس کے اندر سماجوادی نہیں رہ سکے تو اس سمے میں الگ ہوا۔ بعد کو پھر جب سماجوادی ایک کانفرنس میں फिर कांग्रेस में वापस गए, एक बहुत बड़ा हिस्सा समाजवादियों गया, तो मैं फिर कांग्रेस में वापस आया।
ये आवाज है तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में विदेश योजना और उद्योग मंत्री और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे नारायण दत्त तिवारी की। भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग होंगे जिन्हें उन्हीं की पार्टी के लोग नथिंग डूइंग तिवारी और विरोधी ये ना है नर ना है नारी ये है नारायण दत्त तिवारी कहकर उनका उपहास करें, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन तक ना आए। नारायण दत्त तिवारी शायद भारत के अकेले राजनीतिज्ञ थे जिन्हें दो राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जिस समय 1952 में नारायण दत्त तिवारी पहली बार नैनीताल से चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे, उस समय उनकी आयु मात्र 26 साल थी और वो सदन के सबसे युवा विधायक थे। नारायण दत्त तिवारी की खास बात थी कि वो कभी किसी को ना नहीं कह सकते थे। एक जमाने में उनके प्रधान सचिव रहे और बाद में रक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए योगेंद्र नारायण बताते हैं।
तीन खूबियां थी सब उनमें। एक तो ये थी कि किसी को मना नहीं कर पाते थे, बड़े पोलाइट थे, और कोई मिलने आया तो बात कर रहे हैं, फिर कोई और आ गया कोई प्रमुख आदमी तो फिर इनको छोड़ के दूसरे के साथ जरा थोड़ी देर अलग से बात करने लगे, फिर इतने में कोई तीसरा आ गया तो फिर अंदर चले गए अपने कमरे के टॉयलेट की तरफ, उधर कहीं जगह जहाँ भी मिली वहाँ बात करने लगे और फिर वापस आ गए अपने कमरे में जहाँ की पहला वाला व्यक्ति। एक तो बहुत पोलाइट थे, दूसरा वो चीफ मिनिस्टर मैंने देखा है नारायण दत्त जी में कि बड़े पढ़ लिख कर जाते थे, अपने जब लेजिस्लेचर में जाते थे विधानसभा में प्रश्न उत्तर देने या किसी डिबेट में भाग लेने के लिए पहले लाइब्रेरी जाते थे, सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी, किताबें पढ़ते थे, अपना पूरा जितना पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं उसका अध्ययन करते थे और बड़ा अच्छा बोलते थे। और तीसरी बात, उनको शौक था प्लानिंग और डेवलपमेंट में ज़्यादा था, लॉ एंड ऑर्डर में इतना मैं नहीं कहूँगा पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत था उनका।
बहुत कम लोगों को पता है कि जब तिवारी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे तो वो 1959 में स्वीडन जाकर वहाँ 6 महीनों के लिए रुके थे और उन्होंने बाकायदा स्वीडिश भाषा पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी जीवनी लिखने वाले दुर्गा प्रसाद नौटियाल लिखते हैं,
1983 में जब नारायण दत्त तिवारी उद्योग मंत्री बने तो वो दोबारा स्वीडन गए। उन्होंने उस समय स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाम के निवास स्थान पर जाकर उनसे मुलाकात की। जब तिवारी 1959 में स्वीडन गए तो ओलोफ पाम सोशल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पाम ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, उनके हाथ में सीप की बनी एक चिड़िया थी जिसका एक हिस्सा चटक गया था, लेकिन पाम उससे खेल रहे थे। अचानक उन्होंने तिवारी से पूछा, क्या तुम्हें याद है 25 साल पहले तुमने ये चिड़िया मुझे भेंट में दी थी, मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा लेकिन पिछले दिनों घर बदलते समय इसका एक हिस्सा टूट गया। इस बैठक के दौरान तिवारी ओलोफ पाम को योर एक्सीलेंसी कहकर संबोधित करते रहे। पाम ने इसका विरोध किया और कहा कि वो उन्हें योर एक्सीलेंसी की बजाय भाई कहकर संबोधित करें। तिवारी ने हंसते हुए जवाब दिया कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी बगल में बैठे हुए हमारे राजदूत कूटनीतिक शिष्टाचार तोड़ने के लिए मेरी शिकायत हमारे प्रधानमंत्री से कर देंगे। उसी यात्रा के दौरान एक भोज में जाने माने अर्थशास्त्री गुन्नार मृडल मुख्य अतिथि थे और वहाँ नारायण दत्त तिवारी ने अपना भाषण स्वीडिश में दिया था।
नारायण दत्त तिवारी की एक और खूबी थी जो शायद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा से सीखी थी, वो थी लोगों के नाम को कभी नहीं भूलना। वो चाहे क्लर्क हो या चपरासी, तिवारी उसे हमेशा नाम से ही पुकारते थे। तिवारी को नजदीक से जानने वाले मशहूर पत्रकार दिलीप अवस्थी बताते हैं,
जो एक उनकी खूबी थी बहुगुणा से जो उन्होंने शायद अक्वायर की थी कि हर एक को नाम से जानना, मतलब इवन क्लर्क हो चपरासी हो उसको नाम से बुलाना, नाम से लोगों को याद रखना, भीड़ हो उसमें भी लोगों को नाम से बुलाकर अपनी तरफ खींचना, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना, अगर वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बैकग्राउंड के बारे में जाना जाए तो उसके कितने बच्चे हैं, उसकी वाइफ क्या करती है और उनके पिताजी क्या करते हैं, मतलब ये सारी की सारा होमवर्क तिवारी जी के पास तैयार रहता था और वो उनका जो दिमाग का कंप्यूटर था वो बिल्कुल एक पॉलिटिशियन का जैसे होता है ना कि जब जैसे ही मौका आता था तो वो कंप्यूटर ऑन हो जाता था और एकदम से वो ही जानते थे कि कैसे दिल जीतने हैं, कैसे लोगों को हैंडल करना है और कैसे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस को।
अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए मशहूर तिवारी फाइल का एक एक अक्षर पढ़ने के बाद ही फैसला लेते थे। अफसरों को ये मालूम रहता था कि उनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, लेकिन महिलाओं के साथ उनके संबंधों को लेकर तिवारी की काफी किरकिरी हुई। हद तो तब हो गई जब वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे और एक तेलुगु चैनल ने राजभवन के बिस्तर पर तीन महिलाओं के साथ उनका वीडियो दिखाया, जिसकी वजह से तिवारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दिलीप अवस्थी बताते हैं,
इंसान में कुछ कमजोरियां जरूर होती हैं, इनकी ये कमजोरी औरतों को लेकर कमजोरी आज की नहीं है, बहुत पहले की है। मतलब बहुत सारे इस तरह के किस्से हैं जो मेरे ख्याल पावर कॉरिडोर्स में मशहूर भी हैं, और ये कहा जाता है कि भाई शी हैड ऑलवेज सॉफ्ट कॉर्नर फॉर गुड लुकिंग वेमेन।
कहा जाता है अगर नारायण दत्त तिवारी ने 1991 में संसदीय चुनाव जीत लिया होता तो राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव की जगह वो भारत के प्रधानमंत्री होते। दिलीप अवस्थी कहते हैं,
अब ये देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या कैसे होता कैसे नहीं होता, लेकिन ये बात जरूर है कि इस पॉलिटिशियन में बहुत दम था, इस पॉलिटिशियन में बहुत मतलब एक सजग पॉलिटिशियन था जो ब्रीड शायद अब बिल्कुल करीब करीब मिसिंग है। जब हम बात करते हैं आज के जो नेता हैं, तमाम सारे नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, मतलब आपको दो मिनट भी बात कर लीजिए आप तो कोई विजन नाम की चीज नहीं है। यूपी में क्या होना चाहिए, देश में क्या होना चाहिए, विजन वाले लोगों में मेरे ख्याल में ये शायद आखिरी पीढ़ी है, और आज के पॉलिटिशियंस से कंपेयर कीजिए तो ये तो टावरिंग पर्सनालिटीज दिखते हैं। प्रधानमंत्री होते तो कोई बड़ी बात नहीं होती।
तमाम विवादों के बावजूद तिवारी का इतिहास शानदार रहा। वो इंदिरा और संजय गांधी के विश्वास पात्र जरूर थे, लेकिन उनके मीठे बर्ताव के कारण तमाम विरोधी नेता भी उन्हें पसंद करते थे। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
श्रोताओं से माफी चाहेंगे, वक्त की कमी की वजह से आपके खत, आपकी चिट्ठियां आज कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पा रहे। खेल समाचारों के लिए चलते हैं अब। ज्योति का सिंह स्टूडियो में आ चुकी हैं। बताएं ज्योति का, आज खेल के मैदानों में क्या हलचल है?
जी, एशियन गेम्स में कमजोर प्रदर्शन के बाद लय में आने को बेताब भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले मुकाबले में मेजबान ओमान के खिलाफ दमदार शुरुआत करना चाहेगी। ये चैंपियनशिप ओमान के मस्कट में 18 से 28 अक्टूबर तक खेली जाएगी। भारतीय टीम जकार्ता एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने की प्रबल दावेदार थी, लेकिन सेमीफाइनल में मलेशिया से हारने के बाद उसे कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। विश्व की 5वें नंबर की भारतीय टीम टूर्नामेंट में सबसे ऊंची रैंकिंग वाले एशियाई देश के तौर पर प्रवेश करेगी और ओमान से उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या कहना है पूर्व हॉकी प्लेयर हरबिंदर सिंह का।
ये जो मस्कट में एशियन चैंपियनशिप, इसको बोलते हैं एशिया कप भी बोलते हैं, ये टूर्नामेंट जो अभी एशियन गेम खत्म हुई है उसकी जो पहली 6 टीमें हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 5 टीमें तो जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, जापान, मलेशिया, कोरिया और एक होस्ट टीम है ओमान, इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये हमारे लिए सबसे जरूरी इसलिए महत्वपूर्ण है कि तो हमें टीम ने पूरी तैयारी की है और इसका कैंप लगा हुआ था, और ये एक टूर्नामेंट जीतकर हमारी टीम का मनोबल भी बढ़ेगा जो कि इनके बच्चों के काम आएगा।
ये थे पूर्व हॉकी प्लेयर हरबिंदर सिंह। और इसी के साथ 2014 एशियन गेम्स में पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो भारत ने ओमान को 7-0 से मात दी थी। भारत के लिए पूल मैच काफी अहम होंगे जिसमें उसे मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और दक्षिण कोरिया से भिड़ना है, लेकिन भारत के लिए शुरुआती मैच अच्छी परीक्षा भी ले सकता है।
ज्योतिका सिंह से खेल समाचार सुनने के बाद चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनेंगे गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की इजाज़त देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में हिंदू कट्टरपंथियों का प्रदर्शन जारी है। आज इस हिंसक विरोध के दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। ईरान से आई रिपोर्टों के मुताबिक दो अखबारों के प्रबंध निदेशकों पर विभाजनकारी खबर छापने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कदम मशहद शहर में सेक्स टूरिज्म की पड़ताल करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित करने पर उठाया गया है। क्राइमिया के रूस अधिकृत क्षेत्र में हुए बंदूक और बम हमले के बाद 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है। कैर्च शहर के एक कॉलेज में ही हमला हुआ था। एक घायल लड़की की मौत होने के बाद अब इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया, हमें आप तक पहुंचा रहे थे। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, भारतीय समयानुसार, समय जानते हैं आप, सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।